एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है।
हाँ बिल्कुल, और प्रेरित भी किया है, शायद थोड़ा रास्ता भी दिखाया हो।
वही हम बात कर रहे हैं पौलो कोएलो की क्लासिक किताब दी एल्केमिस्ट की। इसको हिंदी में कुछ लोगों ने दी एल्केमिस्ट जीवन हेतु की शोध भी कहा है
भी।
और गुप्त रसायन शास्त्री भी, मतलब कई तरह से समझा गया है इसे।
हाँ।
और कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए पर यह किताब आज भी उतनी ही मतलब रेलेवेंट लगती है।
एकदम। जिंदगी में अपना मकसद, अपना वो पर्सनल लेजेंड ढूंढना, डर पर काबू पाना, एक एक मायने भरी जिंदगी जीना, ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब पूछते हैं कभी ना कभी।
बिल्कुल।
और ये किताब इन्हीं सवालों को एक बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी जादुई सी कहानी के जरिए सामने रखती है।
अच्छा, इस किताब को समझने के लिए ना इसके लेखक पौलो कोएलो को जानना भी जरूरी है। वो ब्राजील के हैं, गीतकार भी रहे हैं और उपन्यासकार तो हैं ही।
हाँ, मशहूर तो बहुत हैं।
बहुत। लेकिन उनकी कहानियों में जो गहराई है ना, वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो उनके अपने अनुभवों से निकली हैं। पता है, लेखक बनने से पहले उनका जीवन खुद एक खोज जैसा था।
अच्छा, किस तरह का?
मतलब हिप्पी की तरह दुनिया घूमी उन्होंने, अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते खोजे और यहाँ तक कि अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से जेल भी गए।
ओह।
हाँ, लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था स्पेन की वो 500 मील लंबी तीर्थ यात्रा कैमिनो डी सैंटियागो। कहते हैं उससे उन्हें एक तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसी ने उनकी पहली किताब दी पिलग्रिमेज को इंस्पायर किया।
अच्छा, तो ये अनुभव उनके लेखन में झलकता है।
बिल्कुल। और यही चीज कोएलो के लेखन को खास बनाती है। वो कोई मतलब किताबी फिलोसोफर या धर्मगुरु टाइप नहीं है।
नहीं,
वो एक कहानीकार है जो जिंदगी के बड़े मुश्किल सवालों को बहुत सरल, दिल को छूने वाली कहानियों में पिरो देते हैं।
और उनकी बात में वजन इसलिए भी लगता है क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी वो एक तरह से सबूत है कि मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का, अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करना मुमकिन है।
सही कहा। और उनकी कहानियों में ना पूरब और पश्चिम की सोच का एक बड़ा अच्छा मेल मिलता है, इसीलिए शायद वो सबको अपनी सी लगती हैं।
तो चलिए अब सीधे दी एल्केमिस्ट पर आते हैं। ये किताब है क्या असल में? ऊपर से देखूं तो एक एडवेंचर स्टोरी लगती है।
हाँ, एक सफर की कहानी।
बिल्कुल, एक साहसिक उपन्यास, लेकिन अंदर से ये दार्शनिक और प्रतीकात्मक ज्यादा है।
हाँ, सिंबॉलिक।
कहानी का हीरो है सैंटियागो, स्पेन के एंडलुसिया का एक गडरिया लड़का। वो अपनी भेड़ों के साथ ठीक है, खुश है, पर दिल में कहीं दुनिया देखने की इच्छा है। और उसे एक सपना बार बार आता है, मिस्र के पिरामिड, वहां कोई खजाना दबा है।
और यहीं से सब शुरू होता है।
हाँ, यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा, जो सिर्फ मिस्र तक का सफर नहीं है, बल्कि खुद को खोजने की, अपने मकसद को पाने की एक गहरी अंदरूनी यात्रा भी है। एक तरह से ये हम सब की तलाश है।
बिल्कुल। जिंदगी में मायने और सेटिस्फैक्शन की तलाश। और इस किताब का जो कोर आइडिया है ना, जो दिल है इसका, वो ये है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है।
हाँ, वो अनूठा मकसद।
उसका अपना अनूठा मकसद, उसकी डेस्टिनी। और किताब का सबसे मशहूर मैसेज भी यही है कि जब आप पूरी शिद्दत से सच में अपने इस लेजेंड को पाना चाहते हो,
तो पूरी कायनात आपकी मदद करने की साजिश करती है।
एग्जैक्टली। साजिश शब्द यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे सब मिलकर आपके लिए काम कर रहे हों। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद जैसी है जो जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं या किसी मोड़ पर खड़े हैं।
बिल्कुल।
इसमें सैंटियागो दो यात्राएं एक साथ कर रहा है, एक तो बाहरी फिजिकल यात्रा स्पेन से टैंजियर, फिर सहारा रेगिस्तान,
हाँ, नखलिस्तान से होते हुए पिरामिड तक।
और दूसरी जो शायद ज्यादा अहम है वो है उसकी भीतरी स्पिरिचुअल जर्नी। वो एक साधारण गडरिये से एक समझदार नौजवान बनता है।
वो दुनिया के इशारे पढ़ना सीखता है।
हाँ, अपने दिल की आवाज सुनना सीखता है और जिसे कोएलो दुनिया की आत्मा कहते हैं उससे जुड़ना सीखता है।
और सफर में कितने अलग अलग लोग मिलते हैं उसे, वो रहस्यमयी बूढ़ा राजा,
हाँ, मेल्कीज़ेडेक
फिर वो क्रिस्टल मर्चेंट,
जो अपने सपने से डरता है,
फिर वो किताबी अंग्रेज,
फातिमा रेगिस्तान की लड़की,
और खुद अल्केमिस्ट। हर कोई उसे जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ाता है।
सही कहा। इस कहानी में भाग्य है, इच्छा शक्ति है, डर है, प्यार है, कामयाबी का मतलब क्या है, ये सब है।
और सपनों के रास्ते में आने वाली रुकावटें भी, जैसे फेल होने का डर या फिर
या बस जो चल रहा है उसी में फंसे रहने का आराम, वो भी एक रुकावट है।
तो चलिए जरा इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखें।
हाँ जरूर।
तो शुरुआत होती है सैंटियागो के उस सपने से और उसकी बेचैनी से, फिर वो मिलता है मेल्किजेडेक से जो खुद को सालिम का राजा बताता है,
और यहीं पर वो पर्सनल लेजेंड और कायनात की साजिश वाली बात आती है।
हाँ, मेल्किजेडेक उससे उकसाता है, कहता है भेड़े बेचो, सपने के पीछे जाओ, और वो उसे दो पत्थर भी देता है, यूरीम और थम्मीम।
हाँ, जैसे कोई मदद के लिए, इशारे समझने के लिए।
फिर सैंटियागो हिम्मत करता है, अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर शहर। लेकिन पहुंचते ही
धोखा, सारे पैसे लुट जाते हैं।
बिल्कुल, ये पहली बड़ी ठोकर है। वो एकदम टूट जाता है, सोचता है चलो वापस घर चलते हैं।
ये बहुत रियल लगता है, पहली मुश्किल आते ही हम पीछे हटने का सोचते हैं।
हाँ, लेकिन तभी उसे वो पत्थर याद आते हैं और वो रुकने और लड़ने का फैसला करता है। ये एक अहम मोड़ है, हार मान लेना या मुश्किल को एक मौके की तरह देखना।
फिर वो क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करता है। ये कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका भी एक सपना है मक्का जाने का।
हाँ, पर वो सालों से टाल रहा है
इसी डर से कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का मकसद क्या बचेगा। ये उन बहुत से लोगों की कहानी है जो डर के मारे अपने सपनों को बस बस देखते रहते हैं, जीते नहीं।
सही कहा। सैंटियागो वहां करीब एक साल काम करता है, पैसे कमाता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो उस व्यापारी के अधूरे सपने का दर्द देखता है
और तय करता है कि वो ऐसा नहीं बनेगा, वो अपनी यात्रा जारी रखेगा।
बिल्कुल। इसके बाद सैंटियागो एक कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान पार करने निकलता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है।
हाँ, वो जो किताबों से कीमिया यानी एल्केमी सीखना चाहता है।
ये एक तरह से ज्ञान के दो तरीकों का टकराव है, किताबों से सीखना बनाम अनुभव से जीकर सीखना।
बिल्कुल। सैंटियागो रेगिस्तान को देखकर, हवा को महसूस करके सीखता है। वो दुनिया की भाषा समझने लगता है जो शब्दों के बिना होती है, इशारों में।
ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से भी आता है।
हाँ, फिर कारवां पहुंचता है अल फय्यूम नखलिस्तान, और यहाँ सैंटियागो की जिंदगी में फातिमा आती है
और उसे प्यार हो जाता है।
हाँ, एक पल को लगता है कि शायद यही मंजिल है, शायद यही खजाना है। वो रुकने का सोचता है, लेकिन फातिमा उसे याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी के पर्सनल लेजेंड के रास्ते में नहीं आता, बल्कि वो उसका हिस्सा बन जाता है। वो उसे आगे जाने को कहती है और वादा करती है कि वो इंतजार करेगी।
ये प्यार की एक बहुत बहुत मैच्योर और खूबसूरत समझ है जो बांधता नहीं, आजाद करता है।
बिल्कुल। नखलिस्तान में ही एक और घटना होती है। सैंटियागो बाजों को लड़ते देखता है और उसे एक विजन आता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है।
वो कबीले के सरदारों को चेतावनी देता है
और उसकी बात सच निकलती है। वो नखलिस्तान को बचाने में मदद करता है। इसी घटना से असली एल्केमिस्ट का ध्यान उसकी तरफ जाता है।
अच्छा, तो एल्केमिस्ट से मुलाकात यहाँ होती है।
हाँ, एल्केमिस्ट एक रहस्यमयी पावरफुल गुरु है। वो सैंटियागो जैसे किसी शिष्य का ही इंतजार कर रहा था जो दुनिया की भाषा समझ सके, और वो सैंटियागो को पिरामिड तक के आखिरी सफर में गाइड करने की पेशकश करता है।
अब शुरू होता है यात्रा का सबसे मतलब गहरा और आध्यात्मिक हिस्सा।
हाँ, इंटेंस।
सैंटियागो अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। अल्केमिस्ट उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो उसे जिंदगी के गहरे सबक सिखाता है।
जैसे?
जैसे अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल सब जानता है, वो दुनिया की आत्मा से जुड़ा है। वो उसे डर का सामना करना सिखाता है, कहता है कि तकलीफ का डर अक्सर असल तकलीफ से ज्यादा बुरा होता है।
वाह, ये लाइन तो बहुत गहरी है।
हाँ, फिर आता है सबसे बड़ा टेस्ट। उन्हें रास्ते में हथियारबंद कबीआई लोग पकड़ लेते हैं।
ओह।
और अल्केमिस्ट बड़ी चालाकी से दावा कर देता है कि सैंटियागो एक महान कीमियागर है जो खुद को हवा में बदल सकता है।
क्या, ये तो फंसा दिया।
हाँ, अब सैंटियागो के पास 3 दिन है ये चमत्कार करने के लिए, वरना जान से जाएगा। वो घबरा जाता है, जाहिर है, लेकिन फिर वो ध्यान में उतरता है। वो रेगिस्तान से, हवा से, सूरत से बात करता है, मदद मांगता है,
और वो सब उसे उस परम शक्ति की ओर इशारा करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। आखिरकार वो उस हाथ से जुड़ता है जिसने सब कुछ लिखा है, और चमत्कार होता है।
वो हवा में बदल जाता है।
नहीं, हवा में नहीं बदलता, लेकिन वो दुनिया की आत्मा से इतना जुड़ जाता है कि एक भयंकर रेतीला तूफान खड़ा कर देता है।
उसने सीख लिया था कि सब कुछ एक है, और वो भी उस एक का हिस्सा है।
वाओ, ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है।
हाँ, एल्केमिस्ट उसे वहीं छोड़ देता है और सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंचता है, थका हुआ पर उम्मीद से भरा। जैसे ही वो सपने वाली जगह पर खोदना शुरू करता है
कुछ और होता है।
हाँ, कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसका बचा कुचा सोना छीन लेते हैं।
अरे नहीं, इतनी मेहनत के बाद।
हाँ, और जाते जाते उनमें से एक लुटेरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे भी एक सपना बार बार आता है कि स्पेन में एक पुराने टूटे चर्च के पास गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है।
क्या, वही जगह?
हाँ, ठीक वही जगह जहां सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था।
तो खजाना?
उसी पल सैंटियागो को सब समझ आ जाता है। असली खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो तो वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी।
लेकिन फिर ये पूरी यात्रा
जरूरी थी उस खजाने को पहचानने के लिए, उसके लायक बनने के लिए। ये सारे सबक, ये पूरी यात्रा जरूरी थी। वो वापस स्पेन लौटता है, चर्च ढूंढता है, पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सोने चांदी जवाहरात से भरा संदूक मिल जाता है।
वाओ!
कहानी खत्म होती है जब वो फातिमा के पास लौटने की तैयारी कर रहा है। अब वो सिर्फ सोने से अमीर नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और प्यार से भी अमीर है।
क्या कहानी है, सुनने में इतनी सरल पर कितनी गहरी। इसमें इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे संदेश। कुछ मुख्य थीम्स पर बात करते हैं जो निकल कर आती हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहला तो वही पर्सनल लेजेंड। ये सिर्फ एक सपना या गोल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का वो खास गाना है जिसे सिर्फ आप गा सकते हैं। और किताब का ये कहना कि कायनात मदद करती है, ये बड़ी हिम्मत देने वाली बात है।
हाँ, ये उस अंदर की आवाज को सुनने जैसा है जिसे हम अक्सर दुनिया के शोर में दबा देते हैं। ये पूछना कि मैं असल में यहाँ क्यों हूँ।
दूसरा अहम आइडिया है दुनिया की आत्मा या सब चीजों का आपस में जुड़ा होना, इंटरकनेक्टेडनेस। जैसे सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से बात करता है या संकेतों को पढ़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम सब एक बड़े वेब का हिस्सा हैं।
कभी कभी होता है ना, जैसे संयोग, कोई चीज अचानक हो जाती है, सही वक्त पर सही इंसान मिल जाता है। शायद यही वो संकेत हैं जिनकी किताब बात करती है। बस हमें ध्यान देना सीखना होगा। असली दौलत तो रास्ते में मिली, ज्ञान, हिम्मत, प्यार, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग।
सही बात है, मंजिल जरूरी है पर सफर हमें बनाता है, बदलता है। ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। हम अक्सर नतीजों पर इतना फोकस करते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना, उससे सीखना भूल जाते हैं, जबकि असल ग्रोथ तो वहीं होती है।
चौथा बड़ा सबक है डर, फियर। क्रिस्टल व्यापारी का डर, सैंटियागो का डर, लुटेरों का डर। किताब बार बार कहती है कि हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं, हमारा अपना डर होता है।
नाकामी का डर, तकलीफ का डर, अनजान का डर।
हाँ, और कोएलो कहते हैं कि तकलीफ का डर असल तकलीफ से ज्यादा बुरा होता है। ये कितनी सही बात है, हम कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा।
पांचवा, फातिमा का किरदार। वो सच्चे प्यार का प्रतीक है, वो प्यार जो आपको बांधता नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख देता है।
हाँ, वो सैंटियागो को उसके पर्सनल लेजेंड की तरफ भेजती है, ये जानते हुए कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो वापस आएगा। ये प्यार और पर्सनल ग्रोथ के बीच एक खूबसूरत बैलेंस दिखाता है।
बिल्कुल, और आखिर में वो मखतूब वाला आइडिया, यानी ये लिखा हुआ है।
हाँ, मखतूब,
ये किस्मत और मेहनत के बीच का संतुलन है। ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, बल्कि ये कहता है कि जब आप अपने रास्ते पर सही नीयत से चलते हैं तो चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। एक तरह का भरोसा है ये।
हाँ, कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।
इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं।
हाँ, बहुत यादगार कोट्स हैं इसमें, जैसे वो सबसे मशहूर वाली, और जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करता है। ये लाइन, इसमें एक उम्मीद है, एक भरोसा है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं, ये यूनिवर्स पर एक ट्रस्ट की बात है कि जब आपकी नीयत साफ हो और आप पूरी लगन से जुट जाएं तो रास्ते खुलते हैं।
बिल्कुल, भाग्य और कर्म का संगम।
एक और है, ये एक सपने के सच होने की संभावना है जो जीवन को रोचक बनाती है।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि जिंदगी का मजा सिर्फ सेफ खेलने में नहीं है, बल्कि सपनों का पीछा करने में है, उस थ्रिल में है जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मिलता है। उम्मीद ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है।
और ये वाली, जीवन का रहस्य हालांकि 7 बार गिरना और 8वीं बार उठना है।
सीधी सीधी बात, रेजिलियंस, हिम्मत और लगन। हार मानने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सैंटियागो भी गिरा, लुटा, भटका, लेकिन उठा और चलता रहा। सफलता का यही रास्ता है।
हाँ,
गिरो, सीखो और फिर उठ खड़े हो।
और डर पर वो गहरी बात,
अपने दिल को बताओ कि पीड़ा का डर पीड़ा से भी बदतर है, और ये कि कोई भी दिल कभी पीड़ित नहीं हुआ जब वो अपने सपनों की तलाश में गया। ये हमें याद दिलाता है कि असली दर्द अक्सर उस डर में होता है जो हम महसूस करते हैं, न कि उस चीज में जिससे हम डर रहे होते हैं। और सपनों का पीछा न करने का मलाल, वो रिग्रेट शायद किसी भी मुश्किल से ज्यादा दुखदायी होता है।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग है, लेकिन सवाल ये है कि हम इन बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें?
ये जरूरी सवाल है। पहला कदम तो शायद वही है, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानने की कोशिश करना, थोड़ा रुककर सोचना।
हाँ, कि कौन सी चीज है जो हमें सच में खुशी देती है, जिसे करते हुए हम वक्त भूल जाते हैं।
जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज हो, कोई हुनर, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, कुछ भी हो सकता है।
और शायद खुद से वो सवाल पूछना, अगर मुझे फेल होने का डर ना होता तो मैं क्या कर रहा होता।
हाँ, ये पावरफुल सवाल है। दूसरा, थोड़ा रिस्क लेना सीखना। सेंटियागो ने अपनी भेड़ों का आराम छोड़ा। हमें भी कभी कभी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है,
चाहे वो नई नौकरी हो या कोई नया शहर या बस अपनी राय खुलकर रखना।
और ये छोटे कदमों से शुरू हो सकता है, जैसे क्रिस्टल व्यापारी ने अगर मक्का जाने के लिए सिर्फ पहला कदम उठाया होता। हमें भी अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है।
तीसरा, नाकामी को गले लगाना सीखना। फेलियर को सैंटियागो जब लूटा तो वो अंत नहीं था, एक नया मोड़ था। हम गलतियों से, असफलताओं से डरते हैं, जबकि वही हमारे सबसे बड़े टीचर हो सकते हैं।
शायद हमें फेलियर को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग की तरह देखना चाहिए, सीखने की पहली कोशिश।
हाँ, अच्छा नजरिया ये। चौथा, अपने अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना।
बिल्कुल, वो जो संकेत है वो शायद हमारे अंदर से ही आते हैं। कभी कभी थोड़ा शांत होकर सुनने की जरूरत होती है, जैसे कभी कभी लगता ना कि ये काम करना चाहिए या इस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं, शायद उस आवाज को थोड़ा और महत्व देना चाहिए।
और आखिर में, रिश्तों को फातिमा की नजर से देखना। ऐसे रिश्ते बनाना जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। प्यार का मतलब कैद करना नहीं, आजाद करना है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि जिंदगी में मायने और खुशी ढूंढना एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये कोई खजाना नहीं जो एक दिन अचानक मिल जाएगा। ये हर दिन अपने डर पर थोड़ी सी जीत हासिल करने में है, अपने दिल की सुनने में है, और इस भरोसे में है कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो कायनात हमारा साथ देगी। असली खजाना शायद वो इंसान है जो हम इस यात्रा के दौरान बन जाते हैं।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे सैंटियागो को खजाना वही मिला जहां से उसने शुरू किया था। अक्सर हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो चीजें जो हमारे अंदर या हमारे आसपास पहले से मौजूद होती हैं।
हाँ, ये बात तो है,
लेकिन उन्हें पहचानने के लिए, उनका मोल समझने के लिए वो पूरी यात्रा जरूरी थी। शायद हम सबको अपनी जिंदगी में ऐसी यात्राओं की जरूरत है ताकि हम उन खजानों को देख सकें जो हमारी नजरों के सामने ही हैं। डर सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन हर छोटा कदम उस दीवार को थोड़ा थोड़ा गिराता है।
सही कहा। तो आज के लिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ।
जैसे सैंटियागो की यात्रा ने उसे उस खजाने को पहचानने में मदद की जो हमेशा से वहीं था, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है? कोई हुनर, कोई रिश्ता, कोई अंदरूनी ताकत जो पहले से मौजूद है, बस आपके द्वारा पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।